أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. دور قرآن 2025 DQ 2025. آج اس کا پارہ نمبر 18 پارہ قد افلاح کے لفظ سے ہے، اس کو شروع کریں گے. بہت ہی خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس میں انسانوں کی کردار سازی کے جو پوائنٹس ہمیں دیے، اگر ان سب پہ ہماری نظر رہے اور ہم اپنے بچوں کی تربیت انہی بنیادوں پہ کریں تو یقین کیجئے کہ یہ دنیا جنت ہو جائے. تو اس میں پہلے تو سب سے محبت سے درود شریف. اللہم صلی علی محمد ولا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد ولا علی محمد کما بارکت علی ابراہیم ولا علی ابراہیم انک حمید مجید. ان الفاظ کو ادا کرنے کے دوران ہم سب جسم کے ایک ایک عضو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کا قرب محسوس کریں. چھوٹی چھوٹی زندگیاں تھیں، لگا کے چلے گئے، اور اجر ہمیشہ کے ہیں. اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ، تو نے جیسے سراجم منیرہ کو چنا اندھیروں میں روشنی کا ایک چراغ بننے کے لیے، مجھے بھی آج اپنے ارد گرد کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے چن لے. بچپن سے سنی بھی ایک دعا، بغیر شعور کے مانگی دعا، کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس کا ایک جملہ کیا ہے کہ ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ کہا کیا گیا. تو سارے اساتذہ کرام جو کسی بھی اسکول کو رن کرتے ہیں اور اسپیشلی چھوٹے بچوں کا اسکول، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ ساتھ ساتھ اس دعا کا مطلب بھی بتائیں. بچوں کے دلوں میں شروع سے یہ خواہش آ جائے کہ ہم نے اس اندھیرے سے لڑنا نہیں، بلکہ ہم نے اس اندھیرے کو بدلنا ہے. ہر دوسرا بندہ آج دیکھیے کہ اندھیروں کی بات کرتا ہے، اور خاص طور پہ آج کے اس پارے کو پڑھنے کے دوران، سننے کے دوران، تو آپ کا دل مچلے گا کہ اللہ کیسے تبدیلی لائیں، اللہ کیا کریں. تو اس کے لیے اس وقت دعا کر لیجئے کہ اللہ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی سہاروں سے محروم کر کے تو نے اتنا کارآمد بنا دیا کہ آپ نے اپنے دور کے نہیں قیامت تک کے اندھیروں کو دور کر دا، تو ہمیں بھی اس کام کے لیے چن لیں. اور اس میں ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی کے اس موڑ پہ رکے ہوئے ہیں اس وقت کہ جب پیک کا وقت ہوتا ہے. انسان کو دنیا کی بہت ساری ٹیمپٹیشنز ہوتی ہیں، اور انسان سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی اور کچھ کما لوں، کچھ اور پڑھ لوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک پروفیشن لینے کے بعد بھی لوگ نہیں بیٹھتے نا، کچھ عرصے بعد کچھ اپ گریڈ کر لیتے ہیں، ریفریشنگ کورسز کرتے ہیں. خاص طور پہ میڈیکل کی لائن میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، کچھ اور اسپیشلائز کر لیں. پہلے چلے جی جنرل تھے، ایم بی بی ایس کیا، آپ کو اسپیشلائز کریں. اسی طرح ہر فیلڈ میں یہ چیز ہمیں دکھ رہی ہوتی ہے نا. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں اگر کسی کو اللہ کے دین کی سمجھ آ جائے اور اللہ کا دین اسے کیا چاہتا ہے، تو پھر وہ محمد عربی کو رول ماڈل بنائے. کاروبار بھی چل رہا ہے، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، مزہ بھی ہے، لیکن دل ان چیزوں میں نہیں ہے. اور یہ مومن کی کیفیت ہونی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے کہ کام کوئی بھی کرے لیکن دل اللہ کی طرف ہو. اور پھر ہم نے دیکھا کہ آپ کا اخلاق کتنا پیارا تھا کہ آپ کے پاس آیا ہوا ایک بچہ جو غلام بن کے آیا تھا، اب وہ آپ کا بیٹا بن رہا ہے. باپ لینے آ رہا ہے، بیٹا جانے کو تیار نہیں. تو ایسا شخص پھر دنیا کے لیے کیوں نہ رول ماڈل ہو. تو پیچھے ہم نے جہاں پہ بات چھوڑی تھی وہ کیا تھی کہ زید کو جب لینے آئے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے بیچ میں جا کے کہا کہ زید آج سے میرا بیٹا ہے، یہ میرا وارث، میں اس کا وارث ہوں گا، تو حارثہ یہ منظر دیکھ کر خوشی سے اچھل پڑا اور بیٹے کو آپ کے پاس چھوڑ دیا. کیا سوچ کے کہ بس اب یہ اچھے ہاتھوں میں. اس کے بعد کیا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کی پرورش میں آ گئے. بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی کا نام سن کے ہمارے اپنے دلوں میں ان کے ساتھ بڑی محبت محسوس ہوتی ہے نا. تو ابو طالب تھے تو سردار، लेकिन गरीब थे। उस दौर में लीडरशिप के साथ पैसा नहीं था, जैसा कि आज अमूमन दिखता है। लोग हुकूमत में कई दफ़ा सिर्फ पैसा या अथॉरिटी लेने के लिए भी आ जाते हैं। इंसानों की खिदमत या आवाम का जो फ़ायदा है वो तो एक साइड की बात है ना। तो हज़रत अली उनके बेटे थे और उनके बहुत से बच्चे थे। तो कभी ऐसा अरबों में होता ना कि बच्चे बहुत होते और कमाई कम होती, तो फिर उनको कभी भी फैमिली प्लानिंग का ख्याल नहीं आता था कि दो बच्चे खुशहाल कराना। वो बच्चे पैदा होने देते लेकिन ख़ानदान के खाते पीते लोग जो थे ना, वो उन बच्चों की कस्टडी ले लेते। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक तो हक़ था अबू तालिब का, और आप फील करेंगे सीरत पढ़ने के दौरान कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हक़ वाले का हक़ दिया ज़रूर। तो अल्लाह के नबी ने हज़रत अली की कस्टडी ले ली, परवरिश में आगे, और इस तरह भी हज़रत जैद और अली दोनों साथ रहने लगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाड प्यार में ज़िंदगी की सारी तलखियाँ भूल गए। ये भी अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं, कभी बाप दूर होते हैं, कभी बाप फौत हो जाते हैं, कभी बाप होते हुए भी नहीं होते। अल्लाह क्या सिखा रहा होता है इन बच्चों को? ये सिखा रहा होता है कि एक दर बंद होता है तो कई खुलते हैं। तो कभी कॉम्प्लेक्स ना अपनी औलादों को दें। अगर किसी के पास भी ऐसा कोई तजुर्बा है तो अपने बच्चों की और ज़्यादा इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करे कि देखो बेटा, अल्लाह के नबी भी तो बाप के बगैर पले। अगर आपको अबू का प्यार नहीं मिला, आपके अबू नहीं हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो बहरहाल अबू तालिब के पास चूँकि बच्चों की कसरत थी, दौलत की किल्लत थी, बड़ी मुसीबतों से गुजारा करते थे, न जाने किन किन दिक्कतों से दिन काटते। फिर इस पर गज़ब क्या हुआ कि अरब में एक बहुत ज़बरदस्त कहत पड़ गया, ऐसा कहत जो अपनी मिसाल आप था। तो अबू तालिब का तो पूछना ही क्या, बड़े बड़े रईसों की कमर टूट गई और न जाने कितने दौलतमंद कंगाल हो गए। और आपके एक और चचा भी थे, नाम आपको मालूम है सबको ही तकरीबन, हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हो। ये बनी हाशिम के रईस समझे जाते, पैसा बहुत गया, आज की ज़ुबान में आपके मिलियन एरियन नहीं, बिलियन एरियन थे। आपने इसी मौके पर इनसे कहा कि हम दोनों अबू तालिब के दो लड़कों को अपनी परवरिश में ले लें, इससे उनकी परेशानियों में कमी आ जाएगी। और दोनों ने जाके अबू तालिब के पास जाकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो अबू तालिब का जवाब क्या था? जिनको चाहो ले लो। तो इस तरह अब्बास ने जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हो को लिया और आपने अली रज़ी अल्लाह अन्हो को, और उस वक्त से आप अली रज़ी अल्लाह अन्हो के शफीक बाप भी बन गए और अली आपके चहीते बेटे बन गए, हालांकि रिश्ता दूसरा था। अब आप इस सारे को सुनकर अपने लिए अमल का नुक्ता लीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि लोग मुंह से बोलकर आपको अपनी ज़रूरतें बताएं। आपके अपने ख़ानदानों में, आपकी फैमिलीज़ में अगर कोई है तो उसको भी सहारा दीजिए, और शर्मिंदा किए बगैर। बाज़ दफ़ा हम खिदमत कर भी देते हैं, कुछ किसी को दे भी देते, ले भी लेते, लेकिन फिर सुनाते बहुत है। तो ऐसा कभी ना कीजिए। अल्लाह ताला बचा के रखे हम सबको। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अख्लाक इस पारे के नाते से जो आज हम सुनेंगे, इसको भी से ले लीजिए, क्योंकि जब पारा शुरू हो गया तो फिर न जाने हम कहाँ पहुँचेंगे। आज अख़लाक नबी में से हमारे सामने जो कहानी है वो क्या है? क्या तुम अपनी बहन के लिए इसे पसंद करोगे? आप जब भी नबी सल्लम की सीरत का मुताला करते हैं ना, तो आपको एक बात तो बहुत अच्छी समझ आती है, और मुझे लगता है कि इस दौरे कुरान और इसके साथ कुरान, सीरत, हदीस, मतरूक सुन्नतें, अख़लाक नबी का ये ख़ूबसूरत इम्तिज़ाज एक पैकेज की तरह जो आपको मिला ना, इसके बाद आपको एक बात ज़रूर समझ आएगी, और वो क्या है? आपके और आपके सहाबा के दरमियान बहुत करीबी रबता और हम आहंगी थी। आसान करूँ इंग्लिश बोल के? आप अपने सहाबा के बहुत क्लोज़ थे और अंडरस्टैंडिंग थी, आप उनका दुख सुख जानते थे। देखिए, वो उस्ताद उस्ताद नहीं होता कापियाँ किताबें तो खोल के बैठा रहे, पढ़ने में तो बहुत अच्छा, और जो बैठे हैं उसके सामने उनके दुख ही नहीं जान रहा, उनके हालात ही नहीं पता उसको। अल्लाह के नबी सबसे मोहब्बत करते थे, लिहाजा सहाबा भी आपसे शदीद मोहब्बत करते थे। आपकी खिदमत में हाजिर होते, आपको अपने अहवाल से आगाह करते, आपसे घरेलू मसाइल में मशवरा करते। किसी की बेटी जवान हो जाती तो वो आपसे अर्ज़ करता, अल्लाह के रसूल, मेरी बेटी बालिग हो गई है, आपकी निगाह में कोई मुनासिब रिश्ता हो तो रहनुमाई फरमा दें। आपका अख़लाक इतना अजीम था कि सहाबा इकराम बग़ैर किसी खौफ और झिझक के आपसे सवालात करते और आपके बड़े तसल्ली बख्श जवाब पाते। اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کرتے. اب آپ اور میں ذرا سے لیں, اگر آپ بھی کسی ایسے لیول پہ ہیں تو چیک کیجیے. بعض دفعہ لوگ رو پڑتے ہیں, کسی موقع پہ ایسا ایک دو بار ہوا. کیا آپ نے ہاتھ ملایا, ہائے آپ ہمیں اتنی محبت دیتے ہیں, ہم تو فلاں جگہ پہ جاتے تھے, یہ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارے سے کوئی بات کرے. مطلب یہ میں نے آپ کو کوڈ ورڈس دیے ہیں, اس سے بہت زیادہ باتیں وہ لوگ شیئر کرتے ہیں جن کو کوئی تجربہ ہو جاتا ہے. میں اس پہ اپنے آپ کے بارے میں تو یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری تو اوقات اس سے بھی بہت کم ہے کہ کوئی بیٹھ کر میرے سے چار لفظ سیکھ لے. اگر اللہ میری ذات سے کسی کو کوئی ذاتی فائدہ پرسنل لائف میں دے دے, شوہر بیوی کا کوئی تعلق اچھا ہو جائے میرے کسی مشورے سے, ماں بچوں کے آپس کے تعلقات اچھے ہو جائیں, کسی کا رشتہ بنتا بگڑتا صحیح ہو جائے کسی کا ہو جائے, تو میں اس سے زیادہ اپنی خوش قسمتی نہیں پاتی. کہاں قرآن سکھانا, کہاں قرآن کی تعلیم دینا, یہ تو بڑی اعلیٰ بات ہے, یہ تو اللہ ہی کام لے لیتا ہے بندوں سے. تو ہمیشہ عاجزی کے ساتھ, سکون کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ انسان بن کے تعلق بنائیے. آپ بہت اونچے نہیں, ہمارے اندر یہ جو ایک خیال آنے لگ جاتا ہے نا کہ ہم بہت اونچے ہو گئے ہیں اور ہمیں بس اب لوگوں کو اپنے سے کاٹنا اور ہٹو بچو, تو آپ یاد رکھیے کہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساتھ رہنے سے آتی ہیں. انسان ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے لگ جاتا ہے. تو ایک واقعہ آپ سنیں جس سے آپ کو یہ میری ساری تمہید سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کی تربیت کرتے تھے. اصل میں آپ اپنے ملنے جلنے کے دوران ساتھیوں کی تربیت کر رہے ہوتے تھے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی کی کوئی غلط چیز نظر آئے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ نہ کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق ہوتا ہے ایک دوسرے کے اوپر. لیکن انداز کیا ہے وہ آپ آئیے ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ لیجئے کہ کیسے آپ خوبصورت طریقے سے اپنے ساتھیوں کو ان کے رجحانات کے بدلنے کا اندازہ بھی کرواتے تھے. دیکھیے آپ چینج ہو رہی ہیں, دیکھیے آپ کا فوکس اب ذرا کم ہو رہا ہے, کیا بات ہے آج کل آپ پریشان لگتی ہیں. تو اس قسم کے چند جملے جس سے حقیقت میں دوسرے بھی پھر الرٹ ہو جائیں کہ واقعی پھر ان کی نظر میرے اوپر گہری ہے. تو ایک موقع تھا کہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ ریئلائز کیجئے, اللہ کے نبی ہیں اور صحابہ ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں. ایک نوجوان مجلس میں داخل ہوا, وہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہے. کوئی ایسا ویسا سوال, اس جیسا سوال کوئی اپنے باپ سے, اپنے بھائی سے یا اپنے کسی دوست سے بھی کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. جی, آج تک اس قسم کا سوال شاید ہی کسی نے اپنے قائد, اپنے مربی سے کیا ہو. اللہ کے رسول نے اس کی طرف توجہ فرمائی, التفات فرمایا, اس نوجوان کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا, تو وہ بولا, یا رسول اللہ. اب ذرا سے آپ سوچ کے کام پہ, یا رسول اللہ, اذ لی فی الزنا, اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دے دیجئے. ذرا سوچیے, یہ جرأت اور یہ اجازت وقت کے نبی سے ہی مانگی جا سکتی ہے. آپ اپنے اوپر لے کر سوچیں, اگر آپ کا بچہ خدا نخواستہ آ کر کل آپ سے یہ کہے تو آپ کا سر گرم ہوگا, یا آپ لبرل موم بن کے کہیں گے کوئی بات نہیں بیٹا, اٹس اوکے, اس میں اجازت لینے کی کیا بات ہے, وقت کا تقاضا ہے, حالات ہیں, سب کر رہے ہیں, تم بھی کر لو. نعوذ باللہ, ایسی جرأت کے وقت کے نبی سے کوئی آ کر کے, آج کے کسی عالم کے پاس چلیے کوئی آتا ہے اور علم ہے اور حلم نہ ہو اور یہ جملہ وہ بول دے اور بول بھی دے محفل میں, تو میرا خیال ہے کہ وہ امام صاحب تو پھر بھی تحمل سے, صبر سے بات سنیں گے. ہو سکتا ہے جو نمازی آئے بیٹھے ہیں وہ ہٹو بچو اور اس کے اوپر ہاتھاپائی شروع کر دیں. آج ہمارے اندر ذرا سا صبر نہیں ہے, ذرا حکمت نہیں ہے, ذرا ہم نہیں جانتے کہ کسی کو کیسے ڈیل کرنا ہے, کس کی کیا برائی کیسی ہے, اس کا کیا علاج ہے. دیکھیے ڈاکٹر دوائیاں نہیں دیتا, دوائی کم پاؤڈر دیتے ہیں, اور اگر آپ کو کم پاؤڈر تک بھی نہیں جانا تو پھر آپ جا کے کسی ڈسپینسر سے دوائی لے لیں. مجھے نزلہ زکام ہے, دوائیاں تو وہ ہر وقت آپ لوگوں کو بانٹ رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کس چیز کے پیسے لیتا ہے اور اس کی خوبی کیا ہے؟ ڈائگنوز, بیماری کی ڈائگنوز اور مریض کی طبیعت, کوئی الرجی تو نہیں, گرم دوائی دینی ہے اس کو کہ ٹھنڈی دینی ہے, ریئیکشن تو نہیں ہو جائے گا, بس ڈاکٹر چوز کر رہا ہوتا ہے. اور یہ بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے, اسی لیے یہ پروفیشن بہت اہم ہے. ایک عالم دین ہونا, ایک لوگوں کو دین کی قریب کرنا, اس میں جہاں آپ کی اپنے اندر کی سکلز کی بڑی ضرورت ہے نا, جو کام آپ کر رہے ہیں, آپ قرآن سکھا رہے ہیں تو قرآن پہ پورا عبور ہو, حدیث سکھا رہے ہیں تو حدیث پہ عبور ہو, इस तरह दुनियावी टीचर है वो साइंस पढ़ा रहा है उर्दू, नंबर एक उसको उस पर पूरा पूरा हासिल होना चाहिए। लेकिन दूसरी चीज़ उससे भी अहम बन जाती है कभी कभी, कि जो आपके सामने बैठे हैं उनके मिजाज को समझ के बात करें। एक ही लाठी से सबको नहीं हांका जाता, एक ही बात हर जगह नहीं की जाती और मुख्तलिफ जगहों पर एक ही अंदाज़ नहीं इख्तियार किया जा सकता। अब अल्लाह के नबी के सामने आकर एक शख्स अकबर कबायर गुनाहों में से गुनाह की इजाज़त मांग रहा है, सहाबा कराम ने सुनना तो हैरान रह गए, बड़ा ही ताज्जुब हुआ। भला किसी आम शख्स से भी कोई इस किस्म का सवाल कर सकता है? ये तो आखिरी रसूल इमामुल अंबिया अल मुरसलीन है, इनसे इस किस्म का सवाल? बस बयक ज़ुबान से फौरन सहाबा बोले, मख मख, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, ये किस किस्म का सवाल कर रहे हो? किस शख्सियत से ये सवाल कर रहे हो जो कायनात के बासियों को पाक साफ करने वाली, इनका तज़किया नफ्स करने के लिए तशरीफ़ लाई थी? और इस कबीह हरकत को तो इस्लाम ने सख्ती से रद्द कर दिया। अगर कोई शादीशुदा है तो उसकी तो सज़ा इतनी शदीद है कि इसका तसव्वुर भी मुश्किल है। लेकिन यहाँ ज़रा सा सोचिए, आज ऐसा सवाल कोई अपने मुल्क के हुक्मरान से भी नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो हालात ही बदल जाएंगे, हो सकता है जेल भिजवा दिया जाए, मारा पीटा जाए। लेकिन यहाँ वास्ता है, पिछले पारे में आप पढ़ के आए हैं, रहमतुल लिल आलमीन वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। उससे मामला है, अपनी उम्मत के सबसे बड़े खैर ख्वाह, सूरत तौबा की आखिरी आयतें याद कर लें, रऊफुर रहीम, आपका तकलीफ़ में पड़ना उनको दुखी करता है। ऐसी शख्सियत से उनका वास्ता पड़ा कि लोग अपनी उम्मत के सबसे बड़े खैर ख्वाह से ऐसा बेहुदा सवाल वो शख्स कर रहे हैं, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी निगाहों से इस नौजवान को देखा। ज़रा आप इस मेरे जुमले पे तवज्जो फरमाइए, मोहब्बत भरी निगाहों से किसको देखा जा रहा है? आमतौर पे हम किसको देखते हैं दीन के नाम पे? जो तहज्जुद पढ़े, जो इतकाफ़ से उठे, जो कुरान पढ़ने आता है, आप कहते देखो कितना नेक है। और अल्लाह के नबी एक ऐसे शख्स को मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहे हैं जो गुनाह की इजाज़त लेने आया। आपने क्या कहा साहबा से? दाऊ, इसको छोड़ दो, सवाल करने दो। फिर उस नौजवान से फरमाया, उदना तो मेरे पास आओ, मेरे करीब आ जाओ। एक कुर्बत जिस्मानी होती है, यहाँ वो मुराद है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि ऐसा शख्स नबी के साथ ज़हनी तौर पे भी करीब आ चुका है। नौजवान नबी सल्लम के करीब हो गया था कि आपके सामने बिल्कुल दो जानू होकर बैठ गया, जैसे स्टूडेंट बैठते हैं, यानी तशख्खुद की कैफियत में। अब देखिए अल्लाह के नबी की तरबियत का अंदाज़, आपने ना तो डांटा, ना ही ताना दिया, और ना ही ये फरमाया कि अरे पगले ऐसे सवाल भी कोई करता है, तुम्हें जुरत कैसे हुई? नहीं, आपका तो अखलाक ही नहीं था ऐसे लफ्ज़ बोलने का। एक मुशफिक बाप की तरह अल्लाह के रसूल ने उससे बड़ी मोहब्बत और प्यार से बड़े उम्दा अंदाज में चंद सवाल किए। वो सवाल सुन लीजिए, अतुहिब्बुहु ली उम्मिक, क्या तुम पसंद करते हो कैसी हरकत कोई शख्स तुम्हारी माँ से करे? नौजवान ने अर्ज़ किया, ला वल्लाही जाला निल्लाहु फिदा का, मैं आप पर कुर्बान, मैं हरगिज़ अपनी माँ के लिए ऐसी हरकत पसंद नहीं करूँगा। फिर फरमाया, फ़ज़ालिका अन्नासु ला युहिब्बूनहु ली उम्महातिहिम, इसी तरह लोग भी अपनी माँ के साथ ऐसी हरकत पसंद नहीं करते, यानी जिससे तुम जिना करोगे हो सकता है वो औरत किसी की माँ हो। फिर फरमाया इस नौजवान से अगला सवाल, अतुहिब्बुहु ली लिबनतिक, क्या तुम पसंद करते हो कोई शख्स यही हरकत तुम्हारी बेटी के साथ करे? वो नौजवान कहने लगा, मैं आप पर कुर्बान जाऊँ, मैं ऐसा हरगिज़ अपनी बेटी के साथ भी पसंद नहीं कर सकता। तो आपने फरमाया, कोई नहीं पसंद करता कि उसकी बेटी के साथ कोई ऐसा अमल करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उससे पूछ रहे हैं, बताओ अगर यही हरकत कोई तुम्हारी बहन के साथ करे तो कैसा लगेगा? तीसरा सवाल, कल वल्लाहि जालनिल्लाहु फिदाका, अल्लाह की कसम मैं आप पर फिदा हो जाऊँ, मैं कतन पसंद नहीं करूँगा। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह ने फरमाया, फ़ज़ालिका अन्नासु ला युहिब्बूनहु लिख़वातिहिम, लोग भी इसे अपनी बहनों के लिए पसंद नहीं करते। ये सीखिए, गौर कीजिए, अल्लाह के रसूल किस हिकमत से, किस प्यार से और मोहब्बत के साथ एक एक रिश्ते का नाम लेकर इस नौजवान से सवाल करें। और अगला सवाल, अच्छा बताओ कोई ये हरकत तुम्हारी फूफी के साथ करे तो? उसने कहा, मेरी माँ बाप आप पर कुर्बान, मैं अपनी फूफी के साथ भी इस गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपने फरमाया इसी तरह कोई अपनी फूफी के साथ इस काम को बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर अगला सवाल आपने खाला के मुतल्लिक किया, उसने कहा मैं आप पर कुर्बान, मैं अपनी खाला के साथ भी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं करूँगा। आपने फरमाया लोग भी अपनी खाला के साथ इस किस्म की हरकत को बर्दाश्त नहीं करते। और फिर सारी बातों के बाद अल्लाह के नबी ने एक जुमले में ख़ुलासा बयान कर दिया, क्या? फ़क्कुर्रहु मा करीह अल्लाह, तुम भी उसे नापसंद करो जिसे अल्लाह पसंद नहीं करता, कुर्बान जाइए। आज नस्लों की बिगाड़ की बात तो हम करते हैं, हमने तो ख़ुद उनको ज़बरदस्ती बिगाड़ा, ख़ुद डबो डबो के उनको ऐसे माहौल और ऐसे रंग डंग में रखा कि जिसके चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है। और जब ज़रा सा उन पर रंग चढ़ने लगा तो फिर हम परेशान हुए, और फिर हमने ऐसी टोन इस्तेमाल की कि फिर बच्चे बाहर की मोहब्बतों के मुकाबले में आपको और भी जाबिर कहते हैं। नहीं, अल्लाह ताला अपने बंदों पर बेहद मेहरबान है, वो उनके लिए वही चाहता है जिससे वो हलाकत से बच सके। तो जुमला लिख लीजिए, वा अहिब्ब लिन्नासी मा तुहिब्बु लिनफ्सिक, लोगों के लिए वही चीज़ पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो। हम अमूमन इसको कपड़े, खाने, जूतों पे ले आते हैं, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है। आपकी और चॉइस है, किसी और की और हो सकती है, आपका लाइफस्टाइल और तरह के कपड़े पसंद करता है, दूसरे का कोई और हो सकता है। लोग कहते हैं नहीं, जो हमें नहीं कपड़े पसंद वो क्यों दें दूसरों को। नहीं, ये नहीं मुराद इससे। आप जिस तरह का जूता नहीं पहनते, कोई दूसरा पहनता है आप उसको दे दीजिए। यहाँ बात रवैयों की है। नौजवान को मालूम हो चुका है कि मैंने जो सवाल किया नहायत गलत था, मुझे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था, इसलिए वर्ज करता है कि अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मेरे दिल को साफ़ और मेरे किरदार को पाक कर दे। मुराद क्या है कि इस किस्म के वसवसे, वसाविस और शैतानी ख्यालात को दिल से निकाल दे। तो वो थे रऊफ़ रहीम। आपने इस सारी बात के बाद क्या किया, ज़रा सोचिए। उस नौजवान के सीने पे ऐसे दस्ते शफ़क़त रखा, यानी अपना हाथ उस बच्चे के सीने पे रखा, और फिर अल्लाह की बारगाह में एक दुआ की। ये आप सबको अपने जवान बेटों से डील करना नहीं सिखा रहा, जवान बेटियों के साथ डील करना नहीं सिखा रहा। कितनी कूट कूट के मोहब्बत भरी हुई है इस दुआ में भी। क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़म्बहु व तहिर क़ल्बहु वहसिन फ़र्जा हो। ये आप सब याद कीजिए, ख़ास तौर पर जवान बच्चों की माएँ। और अगर आप ख़ुद अपने लिए अभी जवान हैं तो अपने लिए भी मांगे, अल्लाहुम्मा अग़फिर ज़म्बी व तअख़्खिर क़ल्बी वहसिन फ़र्जी। हमें से हर एक शैतान के हाथ में आ सकता है, उम्र का क्या इज़ है, बुढ़ापे में नहीं शैतान छोड़ता, तो जवानी होती है। ए अल्लाह, इसके गुनाहों को माफ़ कर दे, इसके दिल को साफ़ कर दे, और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। और ये जो रिवायत मैंने बताई ना आपको, तो मुस्नद अहमद में सिलसिलातुल अहदीस इमाम नासिरुद्दीन अल्बानी की, फिर मोजम कबीर तबरानी की, और इसी तरह से सुनन अल कुबरा में 8-10 हवालों से ये हदीस मौजूद है। यानी इसमें किसी को कोई डाउट ना हो। और अल्लाह के नबी ने अपने मुबारक हाथ को उस नौजवान के सीने पर रखा, इसकी ठंडक से वो सुकून और चैन मिला जो पूरी ज़िंदगी इस नौजवान को नहीं भूला। आपकी दुआ की बरकत से सारे शैतानी वसवसे ख़त्म हो गए, उसका जहन साफ़ हो गया, उसकी निगाहें हमेशा के लिए इधर उधर देखने की बजाय ज़मीन की तरफ गड़ी रहती थी। इसलिए कि जो आँखें हराम चीज़ देखने से रुक जाएं, इन्हीं को अल्लाह का दीदार नसीब होगा। हराम नज़रें उठाने वालों को रोज़े क़्यामत अल्लाह के दीदार से महरूम होना पड़ेगा। ये जुमला लिख लीजिए, दुनिया में हराम चीज़ों पे नज़र उठाने वालों को रोज़े क़्यामत अल्लाह के दीदार से महरूम कर दिया जाएगा। और अल्लाह के नबी ने नहायत बेहतरीन अंदाज में पुरहिकमत तरीके से ऐसे सवालात किए जिनसे उसके दिल दिमाग में जो शैतानी ख्यालात थे सब दूर हो गए, और वो हर सवाल के जवाब में इनकार करता रहा कि नहीं, मैं ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। पारे का जो थीम है ना, अरबों के यहाँ औरत की इज्जत और शराफत का बहुत ज़्यादा मर्तबा था। ये लोग इतने गयूर थे कि बेटियाँ होती तो आर की वजह से उनको जिंदा दरगोर करते, पीछे पढ़ कर आए सूरह नहल में और आगे भी पढ़ेंगे जाकर। बच्चियाँ जवान होती तो उनकी इज्जत और इस्मत की नहायत अच्छे तरीके से हिफाजत करते। आज़ाद औरत का जिना में मुबतला होना इनके लिए बेहद शर्मिंदगी की बात थी। किसी आज़ाद शख्स की बीवी, बहन, बेटी जिना कर दे, ये लोगों के लिए मलामत का ज़रिया था। और वहाँ अल्लाह के नबी के इस प्यारे अखलाक की वजह से क्या तब्दीली आई, اب یہ اس بارے میں ہم پڑھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا, ایک پیار بھرا جملہ بولتا, نہیں نہیں بیٹا ایسا نہیں کرتے, یہ بری بات ہے, تو بھی ٹھیک تھا. لیکن اللہ کے نبی نے نفسیاتی سوالات اٹھائے اور ان کا جواب نہ دے سکا وہ شخص, تو حیران ہو گئے. تو وہی بندہ آپ کی بات سنے گا جو آپ سے امپریس ہوا ہوگا. ایسا مربی اور مزکی اللہ آج ہمیں بھی بنا دے اور ہمیں بھی نصیب فرمائے. کئی دفعہ ہم اپنی غلط کوششوں سے اپنے ہی بچوں کو دین سے دور کرتے ہیں,